सुर्खियों में
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की समुद्री सैन्य क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
भारत को कल 3 नए नौसैनिक जहाज मिले। इनमें स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी, सर्वे वेसल संशोधक और एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अग्रय शामिल हैं। इन जहाजों को कल कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को समर्पित किया। इन जहाजों और भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी। कोमोडोर जोशी, आकाशवाणी समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
कोमोडोर जोशी, अलग अलग जहाजों की विशेषताओं पर बात करने से पहले मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि इन जहाजों का भारतीय नौसेना में शामिल होना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। इनके निर्माण में भारतीय उद्योग जगत के साथ साथ 200 से अधिक एमएसएमई की भी व्यापक भागीदारी रही है, तो आपके विचार में ये कितना महत्वपूर्ण है?
देखिए, ऐसा है कि आज के वातावरण में जो दुनिया में चल रहा है, ये बहुत जरूरी है कि भारत को अपने पैरों पे खड़ा होना है, आत्मनिर्भर बनना है। उस दिशा में जो सरकार ने काम किए हैं इस बारे में और जो अपनी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी ऊपर जा रही है उसके कारण, चाहे वो शिप बिल्डिंग में हो, चाहे शिप निर्माण में जो अलग अलग इक्विपमेंट काम में आते हैं, बनाए जाते हैं, वो आजकल भारत में बन रहे हैं। इसका उदाहरण ये 3 जहाज हैं जिनमें करीब 75 से 80% इक्विपमेंट जो है वो भारत में बना हुआ है। जैसा कि आपने बताया, करीब करीब 200 एमएसएमई लघु उद्योग इसमें इन तीनों जहाजों में इनके साथ जुड़े हुए थे, ताकि उन्होंने जो इक्विपमेंट बनाए, उन्होंने जो सिस्टम्स बनाए, उन्होंने जो आइटम्स बनाए, वो इन जहाजों में लगे हुए हैं। और ये मैं कह सकता हूं कि भारत के लिए ये बहुत स्वर्णिम मौका है कि पूरे इस दिशा में अच्छी प्रगति करें, और जितना ये गैप रह गया पूरी तरह इंडिजिनस होने में, जो आप कह सकते हैं कि जो वेपन्स और सेंसर्स हैं उसमें ये थोड़ा गैप ज्यादा दिखता है, बाकी जो डिपार्टमेंट हैं शिप बिल्डिंग के, जिसमें शिप की जो बॉडी है जिसको हल बोलते हैं वो, और शिप के मशीनरी जो अंदर लगी हुई है, वो प्राइमरीली हमारे पास अच्छी कैपेबिलिटी है उनका भारत में ही निर्माण करने की और भारत में ही उसको अपने जहाजों पे लगाने की। अगर आप देखिए, भारत में जहाज निर्माण का जो कार्य है वो अभी यहीं पे हो रहा है। कुछ दशक पहले हम लोग जहाज बाहर से मंगवाते थे, आज जहाज घर में बन रहे हैं। और जिसके कारण, अगर आप दोबारा से इसी 3 जहाजों का उदाहरण लेंगे, तो 200 एमएसएमई जैसा आपने बताया, करीब करीब 4,000-4,500 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, 10,000 के करीब लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे जिनमें कह सकते हैं कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिली है।
जी कोमोडोर जोशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि किसी देश की समुद्री शक्ति जितनी मजबूत होती है उसका आर्थिक और सामरिक प्रभाव भी उतना ही अधिक होता है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री के ही शब्द।
मैरिटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। दुनिया को जोड़ने वाले डेटा के विशाल नेटवर्क समुद्र के नीचे से गुजरते हैं। आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। इसलिए जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा।
कोमोडोर जोशी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी और अब आपसे ये बात करना चाहूंगी, आपसे ये समझना चाहूंगी कि स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारतीय नौसेना ने इसे एक अत्याधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोत बताया है। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि स्टेल्थ फ्रिगेट आखिर होता क्या है?
अभी आप देखें, इसके लिए जो स्टेल्थ शब्द है उसका मतलब जानना थोड़ा सा जरूरी है। स्टेल्थ का मतलब है छुपा हुआ, आंखों को एकदम ना दिखे, उस हिसाब से बोला जा सकता है। तो अगर आप देखिए पुराने जो पहले जो जहाज बनते थे, आप उनको अपने से दूरबीनों से या अपनी आंखों से थोड़े डिस्टेंस तक देख सकते थे, बट आजकल जो जहाज बन रहे हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो आज की डेट में करीब 10 से 50 से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक किसी भी जहाज को उसकी जो प्रेजेंस है कि जहाज मौजूद है कि नहीं 300 किलोमीटर दूर, उसको देखने की क्षमता रखते हैं। बट अगर जहाज की कंस्ट्रक्शन ऐसी हो, उसका निर्माण ऐसा हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो रेडार है जिसको हम बोलते हैं, जिससे एक जहाज दूसरे जहाज को देख सकेगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, दूसरे जहाज की अगर कंस्ट्रक्शन एक अलग तरह से हो तो ये रेडार जो है वो देख नहीं पाता है उसको। तो रेडार जो एक इक्विपमेंट है वो एक बीम फेंकता है, वो बीम वापिस आती है दूसरे जो टारगेट जहाज है उससे, लेकिन जो स्टेल्थ शिप है वो टारगेट, वो जो बीम उसके ऊपर जाएगी उस बीम को कहीं और डायरेक्ट कर देगा ताकि वो जिसने बीम आपके पास भेजी है उस जहाज को वापिस ना मिले, उस जहाज को आपकी प्रेजेंस का, आपके वहां मौजूद होने का पता नहीं लगेगा। इस जो टेक्नोलॉजी है उसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और उसमें सिर्फ जहाज निर्माण नहीं, उसका जो पेंट लगाया जाता है उसका भी योगदान रहता है।
आपने काफी विस्तार से हमारे श्रोताओं को समझाया कि आखिर स्टेल्थ फ्रिगेट होता क्या है। आगे बढ़ते हैं कॉमोडोर जोशी, और कल यानी कि 21 जून को विश्व योग दिवस के साथ साथ विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है, और इसी दिन सर्वे वेसल लार्ज INS संशोधक को भी नौसेना में शामिल किया गया। इस जहाज की भूमिका क्या रहेगी और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है?
इंडियन नेवी में जो सर्वे वेसल्स है उनका काम, जैसे कि नाम दर्शा रहा है, सर्वे करना है, मतलब उसको नीचे जो समुद्र के नीचे है उसको देखना है कि क्या चीजें मौजूद हैं, कुछ डेबरी है क्या, कुछ शिप्स का रैक है क्या, उसमें समुद्र का जो बॉटम है उसमें इवन नहीं होता है, जैसे सड़क ऊंच नीच होती है वैसे समुद्र का जो नीचे का हिस्सा रहता है जो पानी के नीचे, वो भी ऊंचा और नीचा रहता है। तो अगर कोई जहाज किसी ऐसी जगह से जा रहा है जहां उसको सफिशियंट डेप्थ नहीं है, जहां गहराई नहीं मिल रही है, तो जहाज के ग्राउंडिंग होने का खतरा रहता है। तो अब जहाज को कैसे पता चलेगा कि मुझे उस जगह पे नहीं जाना है? तो वो चार्ट में उनकी डेप्थ वगैरह लिखी जाती है, और वो डेप्थ कौन लिखता है, शिपरेक इंडिकेट कौन करता है, डेब्री है करके इंडिकेट कौन करता है, वो सर्वे वेसल्स जो है वो सर्वे करते हैं और वो फाइनली इंफॉर्मेशन चार्ट पे दर्शा दी जाती है। और अगर कोई शिपरेक वगैरह है तो मरीनर्स को सबको बता भी दिया जाता है बुलेटिन्स के द्वारा कि इस एरिया में फला फला जगह पे एक शिपरेक है, आप इस जगह से ट्रांजिट मत कीजिए। तो इन जहाजों का जो काम है वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, बट अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। संशोधक जो है, हमारे पास अभी करीब करीब चार सर्वे वेसल्स हैं, उसमें से संशोधक जो है वो लेटेस्ट परसों कमीशन हुआ है, और इसमें अंडर वाटर सोनार साइट स्कैन लगा हुआ है, जो साइट स्कैन सोनार है उससे जहाज की कैपेबिलिटी दाएं बाएं देखने की, नीचे देखने की, किसी एक टाइम पे ज्यादा अच्छे से बढ़ती है, और जो फिर वो एक पिक्चर बनती है उसके सामने कि एक समुद्र के जो नीचे सतह है वो कैसे दिख रही है, वो ज्यादा अच्छे से आती है सामने। तो इनकी जो सर्वे कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, प्रोसेसिंग इनकी ज्यादा बेहतर है, ये वाले जहाज ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं, और उसके कारण पूरा मैरिटाइम सेक्टर, विच डजंट ओनली इंक्लूड भारतीय नौसेना के जहाज अपितु बाकी जो कमर्शियल ट्रेडिंग है उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है जो ये काम करते हैं अपने सर्वे वेसल्स।
आगे बढ़ते हुए मैं आपसे बात करना चाहूंगी INS अग्रे की। ये अर्नाला श्रेणी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैली वॉटर क्राफ्ट है। इसकी खास विशेषताएं क्या हैं और ये भारतीय नौसेना की क्षमताओं को किस प्रकार मजबूत कर रहा है?
जी, जैसा कि नाम में आ रहा है, शैलो वॉटर क्राफ्ट, शैलो का मतलब है कि ज्यादा गहराई भी नहीं, उसका काम है कि वो जो कम गहराई वाले एरिया है उसमें ये एंटी सबमरीन ऑपरेशन कर सकता है। एंटी सबमरीन का मतलब है कि जो समुद्र के नीचे से जहाज को अटैक होने के चांसेस हैं वो उनका पता लगा सकता है। तो काफी सारे जहाज हैं जो थोड़े डीप वाटर्स में जाके वो अपने एएसडब्ल्यू ऑपरेशन, दैट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन कर सकते हैं। ये वाला जो जहाज है ये शैलो वाटर में भी कर सकता है। आजकल की डेट में एसिमेट्रिक वॉरफेयर काफी बढ़ गया है, हमको पता नहीं चलता है कि किस जगह से हमको एक वल्नरेबिलिटी है या थ्रेट आ सकता है, तो कई बार शैलो वाटर से भी थ्रेट होता है। तो ये जो जहाज है ये वहां पे पता कर सकता है कि वहां से कोई थ्रेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसके पास में इसके लिए एडवांस सोनार सिस्टम्स लगे हुए हैं, और अगर कोई ऐसा थ्रेट है जो कन्फर्म भी हो जाता है, लाइट वेट टॉर्पिडोज लगे हुए हैं जिससे इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है इन जहाजों के द्वारा।
कमांडर जोशी, आपसे सबसे पहले मैं एक चीज समझना चाहूंगी यहाँ पे कि महासागर यानी कि ओशन और डीप सीज में क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, और ऐसे में जितना हम अपने मैरिटाइम डोमेन को स्ट्रांग करेंगे, तो आपको लगता है कि मैरिटाइम डोमेन को जितना हम सशक्त बनाएंगे उससे हमारी क्रिटिकल मिनरल्स की डिपेंडेंस बाकी के बाहर के देशों पर कम हो पाएगी?
जी, आपने बिल्कुल सही बोला। ये अगर जो इंटरनेशनल लॉज है उसके हिसाब से देखा जाए तो अपने जो हर एक कंट्री का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वो उसके शोर तटीय लाइन से करीब 200 माइल्स तक समुंदर के अंदर, वो ईईजेड बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके अंदर जो अगर नीचे कुछ मिनरल्स वगैरह पाए जाएंगे तो वो देश के समझे जाते हैं, उसके बियॉन्ड जो है वो इंटरनेशनल एरिया माना जाता है। तो अगर हमारा जो माइनिंग कैपेबिलिटी है वो अगर सशक्त बनाई जाए, डीप अंडर वाटर माइनिंग कैपेबिलिटी, तो समुद्र की सतह के नीचे ये अंदाजा है कि बहुत ज्यादा जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्शन के लिए, चाहे अपने डे टू डे इवन मेडिकल अगर आप देखे जाएं, या फिर किसी और भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर में काफी सारे मिनरल्स हैं जो देश में अपनी जमीन पे नहीं है लेकिन हो सकता है वो सागर के अंदर मौजूद हो और जो हमें जरूरत है। तो हमारा सबसे पहले बनता है कि वो ये जो एरिया है हमारा वो थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रहे, उसमें ज्यादा अपने को वल्नरेबिलिटीज ना रहे, अपने को उसमें ज्यादा इंटरफेरेंस ना रहे बाकी लोगों से, क्योंकि ये जो है ऑल दो ईईजेड बोल सकते हैं बट नेविगेशन फ्रीडम सभी कंट्रीज को, सभी जहाजों को वहां से है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहाज रुक जाएंगे, आना जाना रोक दिया जाएगा, तो जहाज आते जाते रहेंगे दूसरी कंट्रीज के, लेकिन हमारा इतना ये होना चाहिए कि हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं नीचे तो वो सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं, वो कोई और उस पर हक नहीं जमा पाएगा, तो ये अपना एरिया बनता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि ये सारा का सारा जो इकोसिस्टम बनाया गया है, चाहे वो सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर बनाया हो, चाहे वो शिपिंग सेक्टर को 70,000 करोड़ रुपए देके बनाया गया हो, ये सारा का सारा इसको, इसका जो एक अफेक्ट बोलते हैं विच इज एक डोमिनो अफेक्ट बनेगा इसका, उसमें बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो सरकार का इस टाइम जो एक फोकस एरिया लग रहा है, एक ऐसा एक अंदाजा है कि भारत को एक समुद्री शक्ति बनाया जाए।
जी कॉमोडोर जोशी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें इस पूरे विषय के बारे में हमें समझाया, आपने हमें ये भी बताया कि क्या महत्व है उन तीनों शिप्स का जो कल कमीशन हुई है प्रधानमंत्री द्वारा। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय आकाशवाणी को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी शुक्रिया।
अभी आप सुन रहे थे भारत की समुद्री सैन्य क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में